سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے، یہ 83 ورس کی تلاوت کی گئی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کو ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اہل آسمان اور اہل زمین خوشی اور زبردستی سے اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی بات بتائی تھی کہ سارے جو انبیاء تھے وہ دین اسلام پہ تھے اور انہوں نے اسلام کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور ایک دوسرے کی مدد کری. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما تھا کہ کیا یہ خدا کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ آسمان زمین میں جتنے لوگ ہیں خوشی یا زبردستی اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دین جو بھیجا، دین اسلام، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، اور خدا چاہتا یہ کہ لوگ اس کو اپنا مذہب، اسلام مذہب بنائیں. جنہوں نے اس کو دین اسلام قبول نہیں بھی کیا ہے وہ خلقت کی باعث پر سبھی اللہ کے کی اتباع کرتے ہیں. خلقت کی باعث پہ ہر ایٹم کائنات کا اس کے حکم کے تابع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خلق کی ہر چیز کو، چاہے تو کسی کو بیمار ڈال لے، کسی کو مار ڈالے، جو چاہے اللہ کرے. تو اس طریق سے اہل آسمان زمین سبھی اس کے حکم ماننے والے ہیں، فرما بردار ہیں. اب اللہ چاہتا یہ کہ لوگ اسلام لائیں. تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اسلام کے معنی ہے خدا کی توحید کا اقرار کرنا، جو کہ عزیز ال جو طاقت والا ہے، طاقت والا ہے اور بڑا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کو ایک ماننے کا توحید کا نام ہی اسلام ہے. دوسری حدیث ہے جس کے اندر پیغمبر صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نماز آئے گی، کہے گی کہ میں پروردگار میں نماز ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو خیر پہ ہے. پھر روزہ آئے گا، کہ پروردگار میں روزہ ہوں، تو اللہ کہے گا تو خیر پہ. پھر خمس جگات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو خیر پہ ہے. پھر اسلام آئے گا. جب اسلام آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام سے فرمائے گا کہ میں تیرے ذریعے آج میں لوں گا اور تیرے ذریعے میں آج دوں گا. یہ حق ہے کہ حاصل یہ جو بھی اللہ کے دین کے سوا کسی اور کا تابع ہوگا. یہ آیت اس کے آگے کی ہے جو ابھی سلسلہ آیتوں میں جاری ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام غیر، مطلب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو ڈھونڈ نہیں سکتا انسان. اگر ڈھونڈے گا تو مشکل ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تون کرہ، سبھی خوشی زبردستی اس کے تابع ہیں. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و نبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم و نحن له مسلمون. کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا اس پر، اور جو کچھ حضرت ابراہیم پہ اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر، ان کے قبیلے والوں پہ اترا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور دوسرے دیگر انبیاء کو جو دیا گیا، ان سب پر ہم ایمان لائے اور ہم اسی خدا کے فرما بردار ہیں. نحن لہ مسلمون، हम उसी के फरमा बरदार हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमसे अहद लिया है, रसूल अकरम से भी अहद लिया है इस आयत के साथ, हमसे भी अहद लिया कि जितने पुराने अंबिया सारी किताबों पर ईमान ला, जो गुज़िश्ता मंडलिस में तफसीर में पढ़ा गया था कि हर एक से अहद चल रहा है, अहद का सिलसिला जारी है कि जितना पहले भी गुज़िश्ता अंबिया गुजरे उनसे भी अहद था कि जो जो गुज़िश्ता उन पर ईमान लाओ, आगे जो आने वाले उन पर ईमान लाओ। यही अहद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बार बार दोहराया है, ये अहद ये कि ये आयत इस तरीके की आयत बकरा में भी है, फिर आले इमरान में फिर अल्लाह ने उसको दोहराई है। ये अहद इतना ज़रूरी अहद है कि इसको अल्लाह ने बार बार दोहराया है, और यही इस्लाम की बुनियाद है। व मैं यब्तगी गैर अल इस्लाम दीनन फलई यकबल मिन हु व हुआ फिल आखरत मिनल खासरीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाया है इसलिए कि जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन का पैरो होगा उससे हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में खसारा उठाने वालों में होगा। इसी सिलसिले की कड़ी में आयत आगे जा रही है। तो इसीलिए कहा गया ना कि मरो तो इस्लाम पे मरो, आयतें हैं, मरो तो मरना तो मुसलमान ही मरना, वला तमो तो इल्ला अंतुम मुस्लिमून, ये कुरान में बार बार आयतें आई हैं और हमको चाहिए कि हमारे ईमान को दोहराते रहें। इसीलिए तलकीन भी पढ़ी जाती है, इसीलिए जब जब वफात का वक्त आता है तो यासीन पढ़ी जाती है ताकि हम इस्लाम पे अपनी जान दें, क्योंकि अगर इस्लाम छूट गया तो कुछ भी आगे की आयतों में वो सिलसिला जा रही है कि क्या क्या मुसीबत आएंगी अगर आप इस्लाम पे नहीं गए। एक सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरु बादा ईमानहिम व शहीदु अन्ना रसूल हक़ुम व जाहुमुल बय्यनात वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। खुदा ऐसे कौम को लोगों को क्यों कर हिदायत दे दे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए और इस बात की गवाही दे चुके कि रसूल बरहक हैं और उनके पास दलाइल भी आ गए, और खुदा ना इंसाफों को ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। तो ये आयत किसके लिए आई है? यह आयत मीज़ान में कहा दो दो लोगों की आयत आई है, एक तो वो जो कि अहले किताब थे जिन्होंने अपनी किताबों में रसूल अकरम के बारे में अच्छी तरह जान लिया था, अपने बेटों से ज़्यादा रसूल को पहचानते थे, एक तरीके से वो एक ईमान ला चुके थे कि ये रसूल अकरम बरहक हैं, उसके बाद भी काफिर हो गए दुनिया के मफाद से, उसके बाद भी ये लोग काफिर हो गए दुनिया के मफाद से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये काफिर हो गए दुनिया के मफाद से और खुदा जालिम को हिदायत नहीं देता। दूसरा गिरोह कौन सा है? दूसरा गिरोह मुसलमानों का है, वो मुसलमान जो इस्लाम ले आए, दीन ले आए, रसूल की गवाही दे दी, उसके बाद मुर्तद हो गए। तो दो गिरोहों के लिए आयत आई है, जो एक तो वो अहले किताब जिन्होंने हक जान के छुटलाया, गवाही दे दी रसूल अकरम, फिर उसके बाद आँख बंद कर ली। इसी तरह मुसलमान जो कहते होते थे कि आप हक़ है लेकिन अंदर से झुटलाते थे, दोनों के लिए यह है। तो अल्लाह ने कहा मैं इसको हिदायत नहीं देता। तफसीर में है कि इस आयत के सिलसिले में दूसरा सिलसिला भी है कि एक शख्स था अंसार में से मदीने में, उसका नाम था हारिस इब्ने सुवेद, उसने एक को उसका कत्ल करा, एक बेगुनाह का कत्ल करा, और ये वहाँ से मदीने से मक्का भाग गया, मक्का भाग गया और मुर्तद भी हो गया। जब मुर्तद हो गया तो फिर उसने खबर पहुँचवाई रसूल अकरम को, क्या मैं वापस आ सकता हूँ क्या, क्या मैं वापस आ सकता हूँ क्या। तो ये आयत नाजिल हुई थी सख्त वाली, ये आयत सख्त, ये मीज़ान से पढ़ रहा हूँ। जब आयत नाजिल हुई तो उसने फरमाया कि जब वो आयत सुनी तो उसने कहा कि जो तुम खबर लाए हो वो सच्ची है और पैगंबर उससे भी ज़्यादा सच्चे हैं जो तुम खबर लाए हो, और अल्लाह सबसे ज़्यादा सच्चा है। फिर उसने तौबा करी और गया मदीने, फिर वो तौबा करी वो मदीने गया। जी हाँ। तो ये सिलसिला इन्हीं आयतों का आगे चलता है। जो लोग इस तरीके से, जो कि ईमान, जो लोग रसूल की गवाही दे के जो लोग काफिर हो गए, उसके बारे में जो 87 आयत है अल्लाह सुब्हान अल्लाह उसके लिए मैं फरमाता इन लोगों के लिए, उलाय का जजा हूँ अन्य अलहम लानत अल्लाह व मलाइकती व नासी अजमाइन खालिदीन फीहा ला यखफु अनहुम अज़ाबु व लहुम युनज़रून। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह फरमाता है कि उनकी सज़ा ये है, उनकी जजा ये है कि उन पर खुदा की और मलाइका की और तमाम लोगों की लानत है। खालिदीन फीहा, हमेशा के लिए उसमें गिरफ्तार रहेंगे। ला यखफ अनहुल अज़ाबु, न उनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा। वला हुम यंजुरून, मतलब उनको मोहलत भी नहीं दी जाएगी। ये वो लोग हैं, अगर आप ईमान लाने के बाद काफिर हो गए तो लानत है अल्लाह सुब्हान तआला की और मलाइका की और लोगों की, जितने भी समझदार लोग हैं। लानत से मतलब क्या? अल्लाह की रहमत से दूरी। जब अल्लाह की रहमत से दूरी होती है तो क्या आता है? खालिदीन फीहा ला युखफ्फु अनहुमुल अज़ाबु, उनसे अज़ाब ने तो हल्का किया जाएगा ना, उनको मोहलत दी जाएगी। ये नतीजा होता है, वो लानत यहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने उसमें एक आगे की आयत में कहा है इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका व असलहु फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, मगर जिन लोगों ने उसके बाद तोबा कर ली और अपनी हालत को सुधार ली तो बेशक खुदा बख्शने वाला और मेहरबान है। क्योंकि ये शख्स वापस गया मदीना, उसने तोबा करी, यहाँ आया तो वो सिलसिला चल रहा है ना, अभी अपने हारिस का किस्सा सुना, ये गया वापस, वाकई तोबा करी, अल्लाह सुब्हान तआला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना कफरू बादा ईमानहिम सुम्मस दादू कफरू लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुम दालून। जो लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए और कुफ्र में बढ़ते ही चले गए, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल न की जाएगी और वो लोग गुमराह हैं। तो ये दूसरा गिरोह है। ये कौन सा गिरोह है कि ये उसके बाद ईमान लाने में तौबा नहीं करी, उसके बाद कुफ्र में बढ़ता चले गया है। ये गिरोह कुफ्र में बढ़ता चला गया। तो अल्लाह ने कहा कि उलाए हूँ दालून, ये लोग गुमराह लोग हैं। इसके अंदर कौन लोग हैं? एक तो मुर्तद लोग हैं जो वापस नहीं आते दीन पे, और दूसरे कौन लोग हैं? अहले किताब हैं जो कि आगे ही आगे अपनी बात को इनकार पे अड़े रहते हैं। एक रिवायत में ये भी है कि जो लोग ये जब सुवैद भाग के आया था मदीने में तो उसके साथ 11 लोग और आए थे, तो वो भी मुर्तद हो गया था, और जब सुवैद वापस चले गया था ये लोग वहीं बैठे रह गए थे मदीने में। उन्होंने कहा हम तौबा नहीं करते। तो जब रसूल अकरम मक्के तशरीफ लाए फतेह मक्का के बाद, तो इनमें से बहुत से लोगों ने फिर तौबा करी, फिर वापस अल्लाह सुब्हान तआला को वापस लिया। तो अल्लाह ताला बड़ा करीम है, अगर हम आयतों को देखें फिर उसके पीछे बैकग्राउंड देखें तो अल्लाह बड़ा करीम है। तौबा करो तो तौबा के दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन तौबा का दरवाजा कब तक है? आगे की आयत में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातुहुम व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल उल अर्द दहबा वल विफ्त दाबी उलाय अलहम अजाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासरीन। ये आगे गैर है कि जिन लोगों ने, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र करा वो कुफ्र की हालत में ही मर गए, तो निजात हासिल करने के लिए अगर जमीन भर का सोना भी देंगे तो हरगिज़ कबूल न किया जाएगा, उनको दर्द देने वाला अजाब मिलेगा और न कोई उनका मददगार होगा। देखिए जब 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 तौबा क्या होती, इन चीज़ों में तौबा क्या थी? अल्लाह ने कहा कि तौबा करो। अभी तौबा क्यों, तौबा की आयत आई ना, इसमें ईमान की याद आई, काफिर हो गए, फिर तौबा करो। तौबा से क्या मुराद है? तौबा से मुराद है कि तौबा वो तौबा नहीं जो ज़बानी तौबा हो, तौबा वो हो, क्योंकि ये सारी आयतें जो है ना ये अमल की नहीं है, ये ईमान की आयतें थी सारी। तो तौबा मतलब कि वाकई सिद्क़ दिल से फिर से ईमान लाओ, बड़ा मुश्किल काम है ये तौबा है। कि सिद्क दिल से तोबा, तोबा वो होगी कि ईमान दिल पे, कल पे वापस ईमान लेके आओ मरने के पहले। क्योंकि अगर कुफ्र की हालत में मर गए तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने कह दिया कि हरगिज निजात न मिलेगी, अगरचे तुम जमीन को, पूरी जमीन को एक थैला बना दो। इस जमीन को क्या बना दो? एक बोरा थैला, उसमें पूरा सोना भर दो। वो कहा कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारी निजात कर दे तो निजात नहीं मिलेगी। देखें आप शायद कि निजात न मिलेगी। अब आप सोचें कि इससे आखिरत समझ में आती है कि हम थोड़ी थोड़ी परेशानी में, थोड़े की पैसे की कमी में हम परेशान हो जाते हैं। अरे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप जमीन भर का सोना, अरे आप सोचो ना कि कुछ हाय हम क्या मुश्किल का गरीब में फंसे हैं मोमिन। अरे भाई आखिरत में देखें आप कि जमीन भर का सोना कुफार से भी नहीं कबूल किया जाएगा तो मोमिन कितना अमीर होता। मोमिन सोने चांदी की कोई कोई कीमत ही नहीं है, पैसे की कोई कीमत ही नहीं अल्लाह सुब्हान तआला में, कोई कीमत नहीं है। मोमिन की कोई कीमत ही नहीं, मतलब बेश कीमती, इसके अंदाजा नहीं लगा सकते। हमको खुश होना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए। हाँ निजात हासिल करने के लिए वो पूरे जमीन को थैला बना के सोना भर दो कबूल नहीं है तो मोमिन खुश होता है, मोमिन खुश होता है। एक दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इसीलिए आगे की आयत में अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर मोमिन को आजमाया भी है, इसीलिए आगे की आयत में अल्लाह ने मोमिन को आजमाया। लन तनालु बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन वमा तुन्फिकु मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। मैंने क्या वो ठीक से पढ़ा नहीं, अलीम नहीं बोला, नहीं ठीक से नहीं पढ़, फिर से पढ़ता हूँ। तो मोमिन को आजमाया है, तो मोमिन की आजमाइश के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर आयत नाजिल करी, लन तनालु बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन वमा तुन्फिकु मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। अल्लाह कहता है तुम हरगिज हरगिज नेकी हासिल न कर पाओगे जब तक कि जो चीज़ अजीज है खुदा की राह में खर्च न करोगे, और जो कुछ तुम खर्च करते हो खुदा उसको जानता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि मोमिन वाकई उस बिर लंदन बिर्रा, बिर को किसको कहते हैं, पूरी पूरी नेकी, ईमान की नेकी, अमल की नेकी। बिर के ऊपर आयत हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा की तफसीर में, बिर को अल्लाह ने कितना बड़ा बताया, वो आयत पढ़ने का टाइम नहीं है इस वक्त। लेकिन बिर मतलब है क्या है कि कल्ब की नेकी और पूरे अमल मिला के होता है बिर बनता है, कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव नेकी जिसको कहते हैं ना, वो कभी हो ही नहीं सकती, बिर मिल ही नहीं सकता जब तक जो चीज़ अजीज है आपको राह खुदा में न दे दो। क्योंकि वो जब तक खुदा, वो जब तक वो नहीं करोगे तो खुदा की मोहब्बत दिल में कहाँ से आएगी, जब तक कुछ कुर्बानी ना करोगे। एक दुरूद पढ़ रहे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। एक रसूल अकरम के साहबी थे, उनका नाम था अबू तला अंसारी, उनका बड़ा बाग था मस्जिद नबी के सामने। तो जब ये आयत आई तो रसूल के पास आ गए, ये बाग मुझे सबसे अजीज़ है, मैं खुदा की राह में देता हूँ। उसमें जाके रसूल अकरम जाके उस बड़े बाग में जाया भी करते थे, उसमें पानी भी पीते थे, वहाँ से वजू भी करते थे। तो इतना अजीम शान बाग था, तो कहा कि रसूल अकरम में देना चाहता हूँ इस आयत के बाद। तो रसूल अकरम ने कहा हमने तुमसे बाग ले लिया, ये तुम्हें फ़ायदा देगा, ये बाग तुम्हें फ़ायदा देगा। फिर उसको वापस लौटा कहा कि तुम, मैं चाहता हूँ कि इस बाग को तुम अपने रिश्तेदारों में बांट दो। इसी तरह इसी आयत के ज़िल में जब बीबी की शादी हुई थी, तो जब आई घर पे तो उनकी जो शादी की जो ड्रेस थी, खूबसूरत ड्रेस थी, एक मांगने वाली आई, तो बीबी ने इसी आयत के ज़िल में उस ड्रेस को देख के फटे पुराने कपड़े बीबी ने पहन लिए। जी हाँ। और इसी आयत के ज़िल में एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल्लाह इब्ने जफ़ार, जाफ़र, अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र। वो एक बाग में गया तो बाग में देखा एक गुलाम काम कर रहा है, तो देखा एक कुत्ता आया और गुलाम उसको रोटियाँ खिला रहा, देखते देखते वो रोटी पूरी कुत्ता खा गया। तो वो बोला, अब्दुल्ला बोला कि तूने क्या करा, कहा तूने क्या करा, पूरा खाना दे दिया? हमने पूरा खाना दे दिया। कहा कि अब तू क्या खाएगा? तो कहा ये कुत्ता बाहर का कुत्ता था, मुझे लगा कि पता नहीं इसको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने अपना पूरा खाना दे दिया। तो ये बोला अब्दुल्ला ने कहा तू तो बड़ा देने वाला है, आखिर तू बड़ा देने वाला है। फिर ये भी नेकूकार था अब्दुल्ला, तो इसने क्या करा कि पूरा बाग खरीदा और उस गुलाम को भी आज़ाद कराया, वो पूरा बाग उस गुलाम को दिया। तो लोग बाग इतनी कुर्बानी करने वाले भी मोमिनीन मौजूद हैं, हमको भी चाहिए कि इन आयतों से कुछ सीखें। जो जो पसंद का है वो दें, इधर उधर का देने में वो बिर नहीं मिलेगा। एक दुरूद पढ़ने हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलिहि। यह आगे की आयत, ये बनी इसराइल के ऊपर आयत है, कुल्लु ताइमी काना हिल्लली बनी इसराइल इल्लामा हर्रम इसराइलु अला नफ्सही मिन कबले अंत नजलत तौरात कुल फत्तू भी तौराती फतलुहा इन कुंतुम सादकीन। बनी इसराइल के लिए तमाम खाने की चीज़ें हलाल थी तौरात के नाजिल होने के पहले, बजुस जो याकूब ने अपने ऊपर हराम कर ली थी। अगर कह दो अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ला और उसको पढ़ो, इसका तर्जुमा है। इस आयत की बहस क्या है? इस आयत की बहस यह है कि दर हकीकत सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु ताला ने तौरात के नाजिल होने के पहले बनी इसराइल पे जायज़ कर रखी थी, सिवाय जो के इसराइल किसको कहा गया, इसराइल इसमें याकूब अलैहिस्सलाम को कहा गया। उनका नाम क्यों इसराइल पड़ा? क्योंकि वो खुदा की राह में बड़ा जद्दोजहद करते थे, कोशिशें करते थे, तो उनका नाम इसराइल रखा गया था। तो ऊँट का जब गोश्त मोश फरमाते थे तो उनके पेट में तकलीफ होती थी, तो उन्होंने उसको खाना बंद कर दिया था खुद ही के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो सब पूरी कौम बंद कर दे, उनकी वो कौम ने बंद करना शुरू कर दिया था। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने कहा नहीं 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 सारी चीज़ें हलाल थी तौरात के नाजिल होंगे पहले, बजुज जो कि याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद पे अपने ऊपर हराम कर दी थी, उन्हीं खाते थे वो। तो लेकिन जब तौरात नाजिल हुई तो इनकी शरारत की वजह से अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने कई चीज़ें उन पर हराम कर दी बनी इसराइल पे। फिर जब 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 इंजील आई तो इंजील में वापस वो चीज़ें अल्लाह ताला ने जायज़ कर दी, फिर रसूल अकरम ने भी उनको जायज़ करी। तो ये जो थे यहूद ये कहने लगे कि ये चीज़ें तो हराम थी, ये कैसा नबी कि ये उसको हलाल कर दिया। हराम को हलाल कैसे कर दिया, हराम को हलाल कैसे कर दिया? तो वो इस बात के मुनकिर थे कि अल्लाह की आयतें मनसूख भी होती हैं, अल्लाह की आयतें मनसूख भी होती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु ने कहा कि तुम अगर सच्चे हो तो तौरात को लेकर आ जाओ, देख लो उसमें कि पीछे सब चीज़ें हलाल थी। बाद में जो उनकी शरारतें हुई, अपनी शरारतें पता नहीं चाहते थे कि किस तरीके से अल्लाह ने उनको सजाया दी, तो छुपाया करते थे। और तो दूसरा ये है कि जो चीज़ें पाक और ताहिर हैं, इस्लाम मज़हब फितरी मज़हब है, कहा कि जो चीज़ अच्छी है अल्लाह उसको खाने से रोकता थोड़ी है। अगर सज़ा की बात हो तो बात अलग है, वरना इस्लाम फितरी मज़हब है, अल्लाह नहीं रोकेगा। वो आयत आ गए तो अल्लाह सुब्हानहु ने कहा कि फमन इफ्तरा अलल्लाह कदीबा मिन बाद ज़ालिका फ़ऊलैहुमुल ज़ालिमून। कहा क्या, देखो मैंने ये बातें बता दी हैं, तौरात सामने है, उसके बाद जो आगे आयत आई 94 उसमें कहा कि फिर उसके बाद जो खुदा पर झूठ बांधे तो वो लोग ही ज़ालिम हैं। क्या कि अगर फिर भी नहीं मानते अगर ये लोग तो ये झूठ बांधना है खुदा पर। अब आखिरी आयत पढ़ता हूँ आज की, और ये आयत बड़ी जज्बाती आयत है मेरे लिए ख़ास तौर से, और इसको पढ़ के अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो हमको काफ़ी गिरिया पैदा होगा। बड़ा इसको गौर करने की आयत है, और जितना आप गौर करेंगे उतना गिरिया पैदा होगा। قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين। कह दो खुदा ने सच फरमाया, कह दो खुदा ने सच फरमाया तो तुम दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो मुशरिकों में से न थे। इस पे गौर करें कि खुदा कहता कि मैंने सच फरमाया, खुद कह रहा है कि मैंने सच फरमाया है कि इब्राहिम की दीन की पैरवी करो। सादिक खुदा, सादिक खुदा जो कि हर कलाम उसका सच्चा है, इस पे खास तौर से जोर के कहा, मैं पे सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं कि तुम दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो कि मुशरिकों से ना थे। मेरे जज्बात तो ये कहते कि हमको हमारी कब्रों का जो पत्थर होता है ना उसकी याद लिखवा लेना चाहिए मरने के बाद। कुल सदक अल्लाह फतेह मिल्लत इब्राहिम हनीफा, हमको अपने मिल्लत इब्राहिम में दाखिल होने के ऊपर यकीन होना चाहिए। अल्लाह ने क्यों कहा सदक अल्लाह, ताकि हमारा यकीन बढ़ जाए, हमारे दीन पे ईमान की मंजिल हमारी बढ़ जाए। जब खुदा खुद कह रहा है कुल सदक अल्लाह, अल्लाह को कहना पड़ रहा है कि मैं सही सच कह रहा हूं। हाँ हमारी कमबख्ती के फिर भी हम ईमान ठीक से नहीं लाते। ये आयत हमको रोज पढ़ के गिरिया करना चाहिए कि मेरे मौला तुझे कहना पड़ा कि मैं सच कह रहा हूं, और ये कमबख्त हमारा नफ्स हमें खाए जाता है। हाँ इसी आयत को देख के इमाम हुसैन ने पैरवी करी, दीन इस्लाम की पैरवी करी। फतेह मिल्लत कुल सदा फतेह मिल्लत इस्लाम हनीफा, इसमें हनीफा कहना मैं भूल गया, इसका तर्जुमा कह दो के दीन इस्लाम इस्लाम की पैरवी को मिल्लत इब्राहिम हनीफा कह दो के खुदा ने सच फरमाया कि दीन इब्राहिम की जो के हनीफा से क्या मतलब, जो कि सीधे रास्ते पे था दीन मिल्लत इब्राहिम हनीफा, जो अपराइट रिलीजन था, सीधे रास्ते का मजहब। वमा काना मिला वो मुशरिकों में से न थे। तो फतेह मिले थे इब्राहिम हनीफा भी, इमाम हुसैन ने उस आयत को देखा और जिस तरीके से इब्राहिम ने कुर्बानियाँ दी उसी तरह इमाम हुसैन ने भी कुर्बानियाँ दी। हम जब करबला को देखते हैं तो हमने पहली आयत लन तनालो बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी हासिल कर ही नहीं सकते जब तक कि जो चीज़ राह खुदा में प्यारी हो खर्च न कर दो। तो यही तो दीन है फतेह में मिल्लत इब्राहिम, यही तो है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो जो था दिया अल्लाह के लिए, तो इमाम हुसैन उनके बेटे वो आगे बढ़े और उन्होंने जो बिर कमाया दे दे के, कभी बेटे दिए कभी भाई दिया कभी बहन की चादर दी, मौला ने अल्लाह को राजी किया, ऐसा राजी करा कि इमाम हुसैन का नाम हमेशा के लिए अर्श तक बुलंद हो गया।